तो अब आगे एक और खूबसूरत सा टॉपिक शुरू होने लगा है, और वो क्या है, खाने पीने और लिबास पहनने की दुआएं। अब देखिए, जिंदगी, डे टू डे लाइफ, सुबह से शाम तक आम काम जो हमारी आदत भी है, हमारी जरूरत भी है, वो इबादत बन जाते हैं जब उनको सुन्नत के मुताबिक किया जाए। लिख लीजिए, आदत इबादत बन जाती है जब उसको सुन्नत के रंग में किया जाए। इसी में खाना पीना भी, इसी में लिबास है। अक्सर ये जुमला आपने भी सुना होगा कि मोमिन को तो सोने का भी अजर है, उसको तो खाना खाने का भी अजर है, उसको तो अपनी बीवी के साथ अच्छी तरह बात करने का भी अजर है। तो गैर मोमिन का क्या कसूर है? फ़र्क किस चीज़ का दोनों में? फ़र्क यह है कि मोमिन सुन्नत के मुताबिक काम करता है और जहन में रख कर करता है, और गैर मोमिन इसका एहतमाम नहीं करता। तो आइए अपने रोज़मर्रा के खाने पीने, कपड़े पहनने को इबादत बनाते हैं। कैसे? सबसे पहले खाना खाने से पहले की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम में से कोई शख्स खाना खाने लगे तो इसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ खाना शुरू करता हूँ कहना चाहिए, और अगर शुरू में कहना भूल जाए तो इसे कहना चाहिए बिस्मिल्लाह ही फी अव्वली ही व आखिरी ही। बिस्मिल्लाह ही फी अव्वली ही व आखिरी ही, अल्लाह के नाम के साथ खाना शुरू करता हूँ, इसके शुरू और आखिर में। मुराद है कि खाने के शुरू में और आखिर में। शुरू में ना कह सके तो ये जुमले बोल दे। और ये रिवायत जो, ये तिरमिज़ी की रिवायत है 1858। तो दो चीज़ें हैं, शुरू में क्या है, बिस्मिल्लाह, खाली बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हदीस के जितने लफ्ज़ हैं उसमें रहेंगे तो अजर ज़्यादा है। आप कोई पूछे अच्छा पूरी पढ़ लें तो कोई बात नहीं, कम पढ़ें तो बस, हदीस ये है, इसके इर्द गिर्द रहिए, इंशाल्लाह खैर होगी। ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह ही फी अव्वली ही व आखिरी ही, ये भूल का इलाज है। तो इसमें भी देखिए, बात तो वही है कि नाम अल्लाह का है। सवाल पैदा होता है, खाना खाते हुए अल्लाह का नाम हम क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि खाना उसने दिया, उसका शुक्रिया अदा हो रहा है, टोकन है ये, इजाज़त ली जा रही है कि अल्लाह खा लूँ मैं, आई टेक इट प्लीज़। कोई आपका सेल फ़ोन यूज़ करना चाहे, क्या कहते हैं, कैन आई टेक योर फ़ोन प्लीज़, कैन आई कॉल यूज़ कर लूँ? तो बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी भी काम से पहले या कोई खाने पीने से पहले ऐसी दुआ करते हैं तो असल में आप अल्लाह का शुक्राना भी अदा कर रहे होते हैं और इसी के साथ साथ उससे इजाज़त भी ले रहे होते हैं। और दूसरी बात है कि बरकत, पहला हुक्म कुरान के नज़ूल का क्या था, इक़रा बिस्मि रब्बिक, इस पे अमल भी कर रहे हैं हम। तो इस शऊर के साथ ज़रा दोहरा लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को भी इसकी आदत भी डाले।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाही फी अव्वलिही व आखिरी बिस्मिल्लाही फी अव्वलिही व आखिरी बिस्मिल्लाही फी अव्वलिही व आखिरी।
अब देखिए कि अल्लाह ताला के नाम भी है ना, अल अव्वल अल आखिर, आप सूरह हदीद में भी पढ़ सकते हैं ना। तो ये जो कहना बिस्मिल्लाह ही फी अव्वली ही व आखिरी ही, अब जब कोई बहुत ही अक्ल इस्तेमाल करते हैं ना लोग, फिर ये करते हैं, क्या ये नहीं बेहतर है मैं कह दूँ बिस्मिल्लाह ही अव्वल, बिस्मिल्लाह ही वल आखिर? अक्सर जो आपको दुआओं में, वज़ाइफ में कमियाँ बेशियाँ दिखती हैं ना साहब के लाख के, वो इस वजह से निकलती हैं। अच्छा ये तो अच्छा था, बल्कि अच्छा नहीं मैं अव्वल अव्वल कह दूँ, आखिर कह दूँ, शुरू में कहने लग जाऊँ बिस्मिल्लाह ही अल अव्वल, आखिर में कह दूँ बिस्मिल्लाह ही वल आखिर। तो फिर वही बात है कि ये तो मेरी आपकी बात है, किसी को कुछ कहने से पहले ये सोच लीजिए कि ये आपका अपना अमल होगा। जब आप दूसरों से शेयर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर इसी तरह चीज़ें बनती हैं। इसकी छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ कि जैसे लोग आजकल व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस करते हैं, हम एक दिन यौम तौबा मनाते हैं और उसको हमने मना लिया और इस तरह आप सारे उस दिन बैठकर तौबा करें। शुरू वाले ऐसे ही मांगते हैं, बाद वाले कहेंगे वो 5 अक्टूबर को यौम तौबा होता है। एक दो जनरेशन के बाद वो फ़र्ज़ हो चुका होगा, ना हदीस ना कुरान। आज भी हमारे कल्चर में बहुत सारी मारूफ हो गई है ना, लेकिन वो गैर मसनून है, उसके पीछे ये नीयत थी, करने वाले शुरू करने लोग की ना नीयत बुरी थी ना अमल बुरा था, लेकिन बाद वालों ने उसको आगे से आगे लिया, क्योंकि इल्म तो हम लेते कम है। तो हमेशा कोशिश किया करें कोई चीज़ दीन के नाम पे आगे करने से पहले 10 दफ़ा सोचें कि ये मैं सही चीज़ आगे करने लगी हूँ, और इसी तरह से दूसरी चीज़ें। और फिर इसमें आप देखिए कि जब आप पढ़ लेते हैं ये सब कुछ, तो फिर अल्लाह के हवाले। जब अल्लाह ने कह दिया बीच में आ गया या तो पढ़ ले, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला इसका अजर भी पूरा ही देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसे अल्लाह ताला खाना खिलाए उसे कहना चाहिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व तमना खैरम मिनहू। ए अल्लाह, हमारे लिए इसमें बरकत अता कर और हमें इससे बेहतर खिला। सुबहान अल्लाह, और भी बंदा मांग लेता है। क्या पता चला कि जब भी कोई खाना खाए तो अल्लाह से क्या कहे कि अल्लाह ये आपने मुझे खिलाया, मुझे अब इससे बेहतर भी दे दे। तिर्मिज़ी की रिवायत है 3455। तो ये किसको, जिसको अल्लाह ताला खाना खिलाए, अपने हदीस के अल्फाज नोट किए, अल्लाह ही खिलाता है ना जी। कुरान में कई जगह आता है ना, वो खिलाता है, उसको नहीं खिलाया जाता। मुशरिक कौमें अपने बुतों के आगे खाने और प्रसाद रखती थी, याज भी रखते होंगे, तो कहा नहीं, मेरा रब वो है जो खाता नहीं खिलाता है। ठीक है, तो जब भी खाएं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वा तेमना खैरा मिन्हो। अब जो कोई और आपको खिलाता है, तो आप यही नियत करके उसके लिए भी पढ़ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इसके जरिए खिलाया। असल में यहाँ अल्लाह के खिलाने से मुराद यही है कि जब कोई आपको खिलाए तो अल्लाह ही दिलों में डालता है ना कि चलो इसको खिला दो, इसको दावत पे बुला लो। एक तो हमारी रस्मी गुलामी दावतें हैं ना, उसको तो छोड़िए, वहाँ भी ज़रूर ये दुआएं दे के निकला करें, शायद ये दुआ का मिलना ही उनके लिए खैर का रास्ता खोल दे। तो ये दुआ दोहराते हैं मिलके, अल्लाह बरकत दे इसमें और खिला इससे भी बेहतर। बरकत क्या होती है? थोड़े का ज़्यादा होना। चीज़ बहुत मामूली सी थी लेकिन उसमें खैर बहुत डल गई, और आज हमें कसरत नहीं बरकत मांगनी है। आइए दोहराते हैं इसको।
اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه اللهم بارك لنا فيه وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ
और जब दिल के खलूस के साथ पढ़ेंगे तो फिर घर वाले का दिल भी खुश हो जाएगा। देखिए, हम कुछ और नहीं दे सकते तो तारीफ करके दुआ दे दें। हम तारीफें करते हैं, कभी केक ले जाते हैं, कभी कुछ, जी खाली हाथ नहीं जाना। उससे बहुत प्यारा तोहफा दुआओं का होता है, क्योंकि दुआओं के बाद हो सकता है कि उसको इसमें और बहुत सारी खैर मिल जाए। ठीक है, तो अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वा तिमना खैरम मिनहू। ठीक है, फिर जिसे अल्लाह ताला दूध पिलाए इसे क्या कहना चाहिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। अल्लाह, हमारे लिए इसमें बरकत फरमा और हमें इससे भी ज़्यादा दे। अब देखिए, दूध तो बच्चे से ही शुरू हो जाता है, बच्चे को ही दूध पिलाते हैं, तो जब छोटे से बेबी को दूध पिलाने लगे तो पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। तिर्मिज़ी की रिवायत है 3455। तो सुनते सुनते फिर एक दिन बच्चा भी मांगने लगेगा। और आप देख रहे हैं कि बरकत की बड़ी बातें हैं ना, ख़ास तौर पे दूध के साथ, ज़िद ना मिन हो। और आप देखिए कि दूध इल्म भी होता है, अगर ख्वाब में आप दूध देखते हैं, पीते पिलाते कुछ भी, तो ये खैर होती है। हदीस से पता चलता है, हज़रत उमर के नाते से एक हदीस है, तो दूध में इल्म है। अल्लाह ताला में रूहानी इल्म भी दे और दूध भी पिलाए। आज दूध पीना मुश्किल लगता है लोगों को, उसके अंदर कई चीज़ें डाल के पी लें तो पी लें, लेकिन बहरहाल दूध पीना चाहिए। आइए दुआ मांगते हैं मिलके।
اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه
हर चीज़ में आप देखिए, देने का कॉन्सेप्ट है, बढ़ाई का कॉन्सेप्ट है, खुशी का कॉन्सेप्ट है। हमारा दीन कितना खुश रहना सिखाता है ना, और जितना ज़्यादा आप और मैं देने वाले बनते हैं ना, उतनी चीज़ें अल्लाह ताला हमें और दिलवा देते हैं। और जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला की नेमतों को रोकते हैं ना, तो उतना फिर अल्लाह भी खैर को रोकता है। तो हमेशा खैर बांटिए, किसी भी सूरत में बांट सकते हैं उसको ज़रूर बांटिए। आप देखेंगे कि उसके बाद अल्लाह ताला कम नहीं होने देता, कंजूस लोग जो होते हैं, जो समेट के रखते हैं, हौके में ही रहते हैं, पता नहीं क्या कैसे कौन करेगा, तो वो कह लीजिए कि वो ही हमेशा मुश्किल में होते हैं, बाकियों को तो अल्लाह ताला अता करता ही है। तो इंशाल्लाह इस सोच के साथ दूसरों के साथ मामला करना है। अब इसके बाद ये है कि खाने से फरागत हो गई, अब क्या मांगे, पहले तो था ना खाना खाना, जो खाने से पहले की दुआएं, अब खाने से फरागत के बाद की दुआएं। पहली दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाजा वरज़क़नी ही मिन गैरी हौलिम मिन्नी वला कुव्वतिन। तर्जुमा क्या है, हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है जिसने मेरी किसी ताकत के बगैर मुझे ये खाना खिलाया और अता फरमाया। रिवायत है तिर्मिज़ी की 3458। अब देखिए कि इसमें पहली बात है तारीफ अल्लाह की, फिर उसका खिलाना सामने आया था मनी रज़ाक है, फिर मेरी कुव्वत के बगैर ही मुझे दे दिया, यानी मेरी तो ताकत नहीं थी। आप कहते हैं क्या है? मैं बना लेती खुद ही नहीं, गंदम कैसे उगाते, चावल कैसे उगता, जीरा कैसे आप उगाते, सौंफ कैसे आती, नमक कैसे आप निकालते कान में से, मिर्चें कहाँ से आती, कितनी चीज़ों ने आपकी मदद की, तो फिर आपका एक सालन रोटी बना। तो हमेशा इस जज्बे को बंदों के लिए भी रखा करें और अल्लाह के लिए भी, शौहर घर आए, बीवी खाना पकाए, उसका दिल खुश हो जाए। जितना ज़्यादा आप किसी की खुशी को जहन में रखेंगे, आप देखिएगा कि अल्लाह तो वो बाद में खुश होता है, अल्लाह अपने बंदों को पहले खुश कर देता है, और अल्लाह ताला की तरफ से ही रहमतें होती हैं। हमारा दीन कितना प्यारा है कि खाना खिलाने वाले के लिए खुशी, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अतमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरी हौल मिन्नी वला कुव्वा। तो हमेशा जो भी आपको खाना पेश करे उसको खुश कर दें, ऐसे लगे कि आपने पता नहीं उसको क्या दे दिया। आप देखेंगे कि इन दुआओं के साथ दिल करीब होते हैं। तो क्या सीख रहे हैं, आइए जरा इसको अरबी में मिलके मांगते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हाज़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हाज़ा वरज़क़नीही मिन गैरी हौलिम मिन्नी वला कुव्वा وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ।
आप देखिए कि इसमें भी आपको बिल्कुल वैसी ही कैफियत आ रही है जैसे पीछे की दुआ में थी, अपनी बेबसी और तारीफ़ अल्लाह की। और याद रखिए कि जब कोई दूसरा बंदा आपके लिए ज़रा सा भी इहतमाम करे, फिर भी उसमें 1920 नमक कम चीनी ज़्यादा कुछ भी, चुप करके खा लें, दिल नहीं कर रहा खा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाने में नक्स नहीं निकालते थे, भूख ना होती, खाना ना होता तो एक साइड पर कर देते, लेकिन बात नहीं ज्यादा करते थे। हमारा अल्लाह के हुक्म से कुछ ऐसा मामला हो गया, अल्लाह तो नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन हम हो गए, खाते भी रहते हैं, साथ तनकीद करते रहते हैं, आज नमक कुछ तेज हो गया, आज जीरा ज्यादा डल गया, आज मीठा ज्यादा ही हो गया कुछ है? तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो बना रहा होता है शुक्र कीजिए कि उसने आपके लिए बना दिया, और ख़ास तौर पर फिर जब गर्मियों में कोई बनाए और फ्रेश रोटियां पकती हैं तो आप देखा करें कैसे ख़वातीन का पसीना बह रहा होता है और वो घर वालों को गरम गरम खिला रही होती हैं। एक कोट पढ़ा था कि बाप धूप में चले ना और माँ चूल्हे के आगे ना चले तो औलादें नहीं पलती, तो देखा जाए तो सच ही है। बेचारे मजदूर सड़कों के किनारे बैठे कैसे काम कर रहे होते हैं, घर बनाते, धूप पसीने, कहीं गारे में पाँव हैं, फिर रोटी लेके जाएंगे तो माँ फिर तवा रखेगी, आके आगे बैठेगी तो पकाएगी ना, तो ये नस्लें ऐसे ही नहीं पलती, इसके लिए सीना चलाना पड़ता है, इसमें गम खाना पड़ता है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी शुक्रगुजार बनाए और हमें भी शुक्रगुजार बनाए। अगली तो आपके लिए बहुत ही नई होगी, बहुत कम लोग ये हमारे कल्चर में पढ़ते हैं, तो आइए इसको भी दोहराएं। लफ्ज़ आसान है बिल्कुल, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद भी होंगे, इसको ज़रा ज़्यादा दफ़ा दोहरा लीजिएगा, ख़ास तौर पर आखिरी हिस्सा। अल्हम्दुलिल्लाहि हमदन कसीरन तैयिबन मुबारकन मुबारकन फीही गैरा मकफीयिम वला मुवद्दइन वला मुस्तग़निन वला मुस्तग़निन अन्हु रब्बना अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तैजिबम तैजिबम मुबारकन फीह गैर मकफिजिम वला मुवद्दइन वला मुस्तग़निन अन्हु रब्बना। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है, बहुत ज़्यादा पाकीज़ा, और इसमें बरकत डाली गई है। ऐ हमारे रब, ना ये खाना किफ़ायत किया गया कि मज़ीद खाने की ज़रूरत ना रहे, और ना इसे विदा किया गया है, और ना इसे बेनियाज हुआ जा सकता है। अब ये सारी बातें क्या हैं, ज़रा सा पहले तो इसको समझ लीजिए। यानी जो कुछ खाया है, अब वो हमेशा के लिए नहीं खा लिया, मतलब यह है कि तेरी नेमतें बराबर जा रही हैं, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं। ये कोई विदा या रुख्सत करने और छोड़ने वाली चीज़ नहीं। मुराद ये कि अल्लाह, ये हमारा आखिरी खाना नहीं है, बल्कि जब तक जिंदगी है खाना खाते ही रहेंगे। कितना खूबसूरत मफहूम है इस हदीस का। बुखारी के अल्फाज हैं ये 5458। तो क्या पता चला कि बंदा शुक्र के जज्बों में डूबा हुआ है कि अल्लाह आपने मुझे अभी और भी ऐसा खाना खिलाना है, मैं इस खाने को विदा नहीं कर रही, और मैं नहीं कह रही कि बस किफ़ायत हो गया। और लफ्ज़ देखिए, मकफीशी किफ़ायत के लफ्ज़ में, कफ़ा यकफी उर्दू में भी हम बोलते हैं, और मुवद्दा इनमें विदा, अलविदा विदाई जुमतुल विदा वही लफ्ज़ है ना, और मुस्तगनन गनी से बेनियाजी का मानी। आइए ज़रा इसको शऊर से मांगिएगा, क्योंकि इसमें पढ़ने में थोड़ा सा मुगलता लगता है।
अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी गैर मक في ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا
अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपनी आवाज़ में इसको पढ़े और अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए ना। अब तो बहुत ही आसान हो गया, ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह पहले तो बहुत मुश्किल थी, फिर आप उसको सुने, ठीक है? अगर उसमें कोई गलती है, उसको दोबारा फिर पढ़ें, फिर सुने, फिर करें। एक दो बार की प्रैक्टिस के बाद देखिएगा लफ्ज़ ज़ुबान पे आएंगे। फिर इस तरह घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ भी इस प्रैक्टिस को दोहराया करें, तो इंशाल्लाह तआला इससे आप देखेंगे कि जहन भी खुलता है और फिर इसके मानों पे आप गौर भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए अगली दुआ पे चलें। अगली दुआ देख लेते हैं, मेहमान की मेज़बान के लिए दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। ए अल्लाह, इनके लिए इन चीज़ों में बरकत अता फरमा जो तूने इनको दी, और इन्हें माफ़ फरमा और इन पर रहम फरमा। देख, ऐसे नहीं लग रहा मिन्नत समा जाता है कि अल्लाह इन्होंने तो खाना खिला दिया, अब तू इनको और भी खिला, बरकत दे, फिर इनको बख्श भी दे, फिर इनको माफ़ भी कर दे, रहम भी कर दे। सच बताएं, खाना खिलाने वाला फ़ायदे में रहा या खाने वाला? खिलाने वाला। खाने वाले को भी फ़ायदा हुआ कि उसको पकाना नहीं पड़ा और खा लिया, लेकिन जिसने खिलाया उसका ज़्यादा फ़ायदा है। फिर इसमें भी आप देखें, बरकत की दुआ, इसके अल्लाह की तरफ से होने का इकरार, फिर गुनाहों से बख्शिश और रहम है। तो ये मोहब्बतें दिल बड़े करती हैं। सच बताइए, हमारे यहाँ पार्टीज, दावतें, वलीमे, शादी, उपटन, न जाने किस किस नाम पे लोगों को खिलाया जाता है। कितने लोग हैं ये दुआ दे के आते हैं, और कितनों को होश होती है कि इस वक्त दुआ लेनी देनी भी है। ज्यादा ज्यादा क्या कहते, खाना बड़ा मजे का था भाभी, खाना बड़ा अच्छा था, कमाल का पकाती हैं। बस इसी में भाभी जान खुश हो गई हैं। चलिए, लेकिन सुन्नतों को रिवाज दीजिए, हमारी नेकियां बढ़नी चाहिए। और खाना किनको खिलाइए, जो मुत्तकी हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारा खाना न खाएं मगर मुत्तकी। क्योंकि जब आप खाना खिलाएंगे, इसको भी जरा सा समझ लेते हैं, खाने की इतनी बातें हो रही हैं। आप देखिए कि आपने जिनको खाना खिलाया, मसलन 10 लोग आए आपके घर और खाना खा के चले गए, उन्होंने मगरिब की नमाज़ वहाँ पढ़ ली, ईशा पढ़ ली, अब वो खाना खाकर जो उनके अंदर ताकत और एनर्जी आएगी, वो फजर की नमाज़ भी उसी से ही होगी। 6 घंटे तो कमोबेश खाने का असर हमारे जिस्म में रहता है, जाने के बाद, हजम होने के बाद। फिर वो खून में पता नहीं कब तक चले जाएगी वो एनर्जी। अल्लाह को हिसाब बड़े अच्छे आते हैं, आपको मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। उस खाने की ताकत, एनर्जी, उस खाने से बना हुआ हीमोग्लोबन, उस खाने से बनी हुई फैट और EBC, उसका असर जब तक उस बंदे के जिस्म में रहेगा, उससे वो जो नेकी करेगा आप उसमें शामिल है। अब आप सवाल कीजिए, जो गुनाह करेगा तो दुआ किया करे कि अल्लाह मेरा खाना दूसरे को गुनाह से रोक दे। ठीक है, अब ये भी नहीं फतवा देना घर वालों में, किसी खानदान में, कि हम तो आज के बाद किसी को नहीं खिलाएंगे सिवाय मुत्तकियों के। तो हम में से किसकी जुरत और ताकत है कि खुद को मुत्तकी कह सके? ये अल्लाह ही पर्दे रखी रखे तो अच्छे होते हैं। तो आपने नहीं फतवे देने, लेकिन दुआ मांग के खिलाया करें कि अल्लाह हमारे खानों से सेहत दे, अल्लाह हमारा खाना खाएं लोग तो बीमार ना उनको सेहत मिले। ठीक है, आइए मिलके मांगिए। और ये रिवायत जो है ये सही मुस्लिम की है, 2042।
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم
फिर आगे देखिए, खिलाने और पिलाने वाले के लिए दुआ, यानी ऐसे लग रहा है कि ये तो जनरल दुआ थी मेहमान की, मेज़बानी की। आप खाना और पीना दोनों इकट्ठे जब हों, तो खिलाने और पिलाने वाले के लिए दुआ, अल्लाहुम्मा अतएम मन अतअमनी वस्की मन सकानी। अल्लाहुम्मा अतएम मन अतअमनी वस्की मन सकानी। ए अल्लाह, इसे खिला जिसने मुझे खिलाया, और इसे पिला जिसने मुझे पिलाया। सुबहान अल्लाह, बहुत ही प्यारे लफ्ज़ हैं। और आप देखेंगे कि ये अल्फाज जो हैं सही मुस्लिम 2055 और मुसनद अहमद में जिल 6 में 2 और 3 नंबर पेज पे हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक जुमला है कि अल्लाह जिसने मुझे खिलाया आप भी उसको खिलाएं, और जिसने मुझे पिलाया उसको आप पिलाएं। अब देखिए, अमूमन हम खाने पीने को वक्त का ज़ियां समझते हैं, बोझ समझते हैं, बाद लोग शर्मिंदा ही रहते हैं, और ख़ास तौर पर जब दीन की क्लासेस में आने लग जाएं तो छुपाते हैं, खाना नहीं खाना, ये नहीं, खाने की बात नहीं करनी। हालांकि खिलाइए, अगर इस वक्त आपको पढ़ने का और पढ़ाने का सवाब है तो खाने और खिलाने का भी सवाब है, तो खुशी से खाया करें, मेरा रब ने दिया मैं खाऊंगी। हाँ, ऑफ कोर्स, फिर उन सारे आदाब को सामने रखिए जो आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी हैं और आपके दीन के लिए भी ज़रूरी हैं। तो इसको भी दोहरा लेते हैं।
اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني اللهم أطعم من أطعمني وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي
और आप देखिए कि कोई खिलाए ना तो ये कहा करे, अल्लाह आपको जन्नत का खाना खिलाए, आपको हौज़े कौसर से पानी पिलाए, दिल ठंडा हो जाता है। देखिए, चंद बोल होते हैं जो लोगों के दिलों में रस खोलते हैं। कोई एक रोटी सालन खिला दे आपको, कोई कल की बची हुई दाल गरम करके खिला दे, पूरी खुशी से खाइए। अब जब से हम अदबरस्त हो गए, छः छः सात सात आठ आठ खाने, अल्लाह की पनाह, क्यों भाई आपने हमें इतना भूखा समझा? हम फाकों से आए हैं, हम पेटू हैं। ये तो बेइज्जती लगती है मेहमान की कि उसके आगे इतना कुछ रख दें। कोई एक खा ले चीज़, दूसरी ना खा सके तो उसका ही अफसोस हो, घर आके सोचे वो भी नहीं खाया, वो भी नहीं खाया। एक खाना खिलाइए अच्छा सा, कोई एक शोरबा है अगर, कोई एक चले आपने चावल बनाए, यानी वन डिश का मतलब क्या होता है कि एक जैसे दो आइटम ना कीजिए, घर वाला भी शौक से बैठ के खाए, मेहमान भी खाए, बातें भी करें। बात जबान दो दो दिन पहले कुकिंग करते हैं, फिर मेहमान को दर्दें सुनाते हैं, इधर दर्द, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, सुबह से बैठी नहीं हम। चले मेहमान के गले से कैसे उतरे कि मैंने इतना जुल्म किया, मैंने इतना दुख दिया इनको। फिर मेहमान के खाते ही साथ ही वो अपने बर्स में टसमाटियों में लगते हैं, क्योंकि बाद में फिर देर हो जाएगी। तो अच्छा नहीं था कि आप बस एक सालन, एक सैलड, एक सब्जी बनाकर बैठ जाते, वो भी बातें करें, आप भी खाएं। सच बताएं, खाना तो होटल में ज्यादा मिलता है, जाके होटल से खा लीजिए। कंपनी के लिए बैठते हैं तो ये भी बदतहजीबी होती है कि साथ ना खाना, और या फिर मेहमान को फील करा देना कि मैंने बहुत काम किया है। तो अल्लाह ताला बहरहाल हमें सादगी पे रहते हुए, और अच्छा खाना खिलाइए, मज़े का खिलाइए। इसका ये नहीं होता कि बुरा खाना हो, पका हुआ अच्छा ना हो, या प्रेजेंटेबल ना हो, ये हरगिज़ मतलब नहीं। लेकिन कम अज़ कम इंसान की हद के अंदर तो हो ना कि वो इतना खा सकता है, तो फिर इंशाल्लाह ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप भी। फिर अगली हदीस देखिए, नया नया फल देखते वक्त की दुआ, यानी जब भी कोई नया फल आए, जैसे गर्मियां हैं तो आम आ गए, सर्दियों में ऑरेंज आए। अब मसला हमारा क्या है कि हर वक्त ही हर चीज़ होती है। वेस्ट में रहने वाले तो जाएंगे और सेम्सबरी से जो मर्जी ले आए, एजरा से जाकर ले आए, लेकिन वो जो हमारे मुल्कों में एक बहार आती है वो वाकई मज़े की है। सबको बताया, अब खरबूजे आए हैं, इसके बादाम आएंगे, इसी तरह सर्दी का फल है, और वो वाकई जो फ्रेश फल, और आते ही उसकी खुशबू, और वो छीलो और उसके अंदर से जो स्वाद निकलता है, वो आपको अब इन कोल्ड स्टोरेज की चीज़ों में वो लज्जत और वो नयापन नहीं दिखता। तो बहरहाल दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरीना, बबारिक लना फी मदीनतीना, बबारिक लना फी साइना, बबारिक लना फी मुद्दीना। ए अल्लाह, हमारे लिए हमारे फल में बरकत फरमा, और हमारे लिए हमारे शहर में बरकत फरमा, और हमारे लिए हमारे सा यानी मापने का एक पैमाना होता है, जैसे किलो, लीटर, और इसी तरह से डिफरेंट वज़न जो होते हैं मापने का पैमाना। पहले लोग वज़नों से नहीं नापते थे, प्याला बना लेते थे एक साइज़ का, उस प्याले में आता ही 1 किलो है, एक प्याला बना लेते थे उसमें आता ही आधा किलो था। कोई तराजू रख कर हर वक्त थोड़ी तोलेगा, बस उसमें डाला, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं 1 कप चावल, 2 कप चावल, तो यही मुराद है इधर, ठीक है। और हमारे लिए हमारे मुद में बरकत फरमा, यानी जिनसे हम तोले उसमें बरकत हो, ये सही मुस्लिम की रिवायत है 1373। अब ये कब मांगना है आपने, दुआ देखिए ना, नया नया फल देखने की। लेकिन दुआ में तो और भी बहुत कुछ है, फल भी है, फिर पैमानों की बरकत भी है, मुद भी है। तो अब आप भी जब नया फल आए तो बच्चों के साथ इसको मांगा करें, ताकि उनको याद हो जाए। और फिर वो कुरान में आता है ना सूरत अलनाम में, के फलों को देखो जब वो पकते हैं, वह यन ही, क्या खूबसूरत उस पे पॉइंट्स है कि फल जैसे पकता है ना, इस तरह ईमान भी पकता है। शुरू में फल भी खट्टा होता है, कच्चा होता है, इस तरह ईमान भी शुरू में बड़ा कड़वा और खट्टा होता है। किसी ने बड़ी भी तारीफें की हो ईमान की, तो आप कहते हैं हाय हाय, मैं तो ईमान पे आई, मेरी तो जिंदगी अचीरन हो गई। कहा नहीं, अभी आपका ईमान कच्चा, जब ये मीठा होगा ना फिर आप इसको एंजॉय करेंगे। तो आइए जरा इस शौर के साथ इसको मांगते हैं।
اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا
आप देख रहे हैं कि शुरू में मदीनातीना है, और इसके बाद फिर मुद्दीना है। मदीना शहर को कहते हैं, और मुद एक ख़ास पैमाने को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें शुबा ना हो आपको, इसको आप इंशाल्लाह देखते रहेंगे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरीना व बारिक लना फी मदीनतीना व बारिक लना फी साइना व बारिक लना फी मुद्दीना। आपको याद करने का तरीका बताऊं, जैसे कुछ हिस्से शुरू के कॉमन होते हैं, जैसे अगर आप एक लिखिए लाइन में अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरीना, ठीक है, फिर अगली लाइन शुरू कीजिए लेकिन कहाँ से, जहाँ से लफ्ज़ बारिक है, अल्लाहुम्मा नहीं लिखिए, ठीक है, फिर बारिक लना फी मदीनतीना लिखिए, दूसरी लाइन इधर छोड़ दें, फिर तीसरी में बारिक के नीचे फिर बारिक ही लिखिए और वाव से पहले डाल दीजिए अल्लाहुम्मा की जगह पे, फिर व बारिक लना फी साइना, चौथी लाइन भी ऐसे ही करीजिए वाव के बाद, तो आप देखेंगे कि सारे बारिक इकट्ठे हो गए, लना इकट्ठे हो गए, फी इकट्ठे हो गए, ये तो कॉमन लफ्ज हैं। ऊपर है समरीना, फिर मदीनतीना, फिर साइना व मुद्दीना, ये चार अलग से याद कीजिए, समरीना समरीना, मदीनतीना मदीनतीना, साइना साइना, मुद्दीना। अब आपको पता चल गया पहले समर, फिर मदीना या मदीनतीना, और फिर साइना और फिर मुद्दीना। अब वो कॉमन जुमले ऊपर है, पहली दफा पढ़ी अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरीना, खुद ब खुद अगले जुमले याद होंगे। तो ये एक याद करने का आपको टोटका दिया है, आसानी से ऐसे चीज़ें याद होती, बिखरी चीज़ें याद नहीं होती, जितना उसको समेटते जाएंगे, कॉन्साइज करते जाएंगे, उतना फिर याद करना भी आसान होता है। चलिए, खा लिया अच्छा सा, अच्छी सी दुआएं मांग ली, नए फल की दुआएं भी मांग ली, बरकतों की बात कर ली।